नमस्कार, मैं इंद्रजीत। दी प्रिंट सुप्रभात में दिलीप मंडल का लेख, क्या ब्राह्मण भारतीय राजनीति के नए मुसलमान हैं, एक ही तरह से वोट डालने के साइड इफेक्ट। दिलीप लिखते हैं कि कई पुराने लोकतंत्र से उलट, जहां व्यक्ति अपना वोट तय करता है, भारत में समूह की पहचान के आधार पर वोटिंग का रिवाज रहा है। भारत में चुनाव और राजनीति को समझने के लिए ये जानना अक्सर जरूरी हो जाता है कि कोई समूह कैसे वोट करता है। यहाँ राजनीति विज्ञान और मीडिया में जिस एक समूह के वोटिंग के तरीके पर सबसे ज्यादा लिखा गया है वो है मुसलमान। राजनीति विज्ञानियों और चुनाव आंकड़ा विश्लेषकों और पत्रकारों के बार बार लिखने बोलने के कारण हम सब गलत या सही ये जानते हैं कि मुसलमान कैसे एक ही पैटर्न से बीजेपी को हराने के लिए वोट डालते हैं। लेकिन एक अन्य समुदाय है जिसका राजनीतिक व्यवहार भी इसी तरह बिल्कुल स्थिर है और जो लगातार भाजपा को जिताने के लिए वोट डाल रहा है, पर उसके बारे में विश्लेषक लेकर पत्रकार सब आमतौर पर खामोश हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सवर्ण हिंदू या हिंदू उच्च जाति का कहे जाने वाले वोट बैंक की। सवर्ण या तथाकथित उच्च जातियों को पहले ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत और वैश्य के तौर पर चिन्हित किया जाता था, लेकिन EWS आरक्षण के लिए हुए संविधान संशोधन के बाद इन्हें एक कानूनी परिभाषा भी मिल गई है। सवर्णों में वैसे भी जातियां हैं जो SC ST और OBC आरक्षण के दायरे में नहीं है। उच्च जातियों के ही आर्थिक रूप से कम संपन्न लोगों का EWS सर्टिफिकेट बन सकता है। इन जातियों का BJP की ओर रुझान 1989-90 में शुरू हो गया था, लेकिन इसकी पूर्णता 2014 में नजर आती है। 2014 लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा और उत्तर भारत के राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल और चुनाव के बाद सर्वेक्षणों और विश्लेषणों में ये बात साफ तौर से उभर कर सामने आती है। मिसाल के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP को सबसे ज्यादा 71 सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी। यहाँ CSDS के एग्जिट पोल के मुताबिक 72% ब्राह्मणों, 77% राजपूतों, 71% वैश्यों और 79% अन्य उच्च जातियों ने BJP को वोट किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये ध्रुवीकरण और मजबूत हो गया। 2019 में 82% ब्राह्मणों, 89% राजपूतों, 70% वैश्यों और 84% अन्य उच्च जातियों ने BJP को वोट दिया। अन्य सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों में भी इसमें मामूली फर्क है, लेकिन उच्च जातियों द्वारा BJP को समर्थन दिए जाने की बात की पुष्टि वहां भी हुई है। दक्षिण और पूर्वी भारत के उन राज्यों में जहां BJP का अस्तित्व नदारद है या कम है, वहां ऐसा रुझान नहीं है। इसके बावजूद अखिल भारतीय आंकड़ों में उच्च जातियों के सबसे ज्यादा वोट BJP के पास हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के मुताबिक 60% ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों के 50% लोगों के वोट BJP को मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में ये समर्थन और मजबूत हो गया और उच्च जातियों के 61% वोट BJP को मिले। बिहार में उच्च जातियों के 73% वोट BJP के खाते में गए। इसी तरह 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में CSDS के आंकड़े के मुताबिक ब्राह्मणों और ठाकुरों का व्यापक समर्थन BJP को मिला। गोवा विधानसभा चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है, जहां एग्जिट पोल के मुताबिक BJP को उच्च जातियों का भरपूर समर्थन मिला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में ब्राह्मण वोटर को शामिल नहीं किया गया है, पर वहां की प्रभावशाली जात लिंगायत का 64% वोट BJP को मिला है। इसी तरह का वोटिंग पैटर्न मुसलमानों के बारे में बताया जा रहा है। खासकर 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद ये रुझान देखा गया। ऐसे तमाम विश्लेषक और राजनीति विज्ञानी हैं जो बताते हैं कि उत्तर भारत में मुसलमान आमतौर पर उस पार्टी को डालते हैं जो BJP को हराने के लिए सबसे मजबूत स्थिति में होती है। मुसलमान वोटरों का बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो मुसलमान उम्मीदवार के मुकाबले भी ऐसे उम्मीदवार को चुनना पसंद करता है जिसे वह सेकुलर मानता है या जिसे वह BJP को हराने में समर्थ पाता है। यही वजह है कि उत्तर भारत में कोई मुस्लिम पार्टी जिसकी पहचान सिर्फ मुसलमानों से जुड़ी हो फल फूल नहीं पाई। ओबैसी इसके ताजा उदाहरण हैं, जिन्हें छिटपुट सफलताएं ही मिल पाई हैं। इस संदर्भ में हिलाल अहमद का शोध पत्र पढ़ा जाना चाहिए। उनका तर्क है कि मुसलमान वोटर को बंद एक रूप समूह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। CSDS लोकनीति के सर्वे के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि वह वोट देते समय शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। साथ ही अपने धर्म के कैंडिडेट को वोट देना उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर नहीं होता, लेकिन मुसलमान वोटरों में ये पैटर्न तो होता है कि उनकी बड़ी संख्या गैर BJP पार्टियों को वोट डालती है। कर्नाटक में भी ये चलन दोहराया गया, जिसकी पुष्टि एग्जिट पोल में हुई है। इसका एक असर यह है कि मुसलमान वोटर्स को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह की राजनीतिक पार्टियां आश्वस्त रहती हैं कि उनका वोट कहा जाएगा और उनसे किसी चौंकाने वाले व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती है। इस वजह से राजनीतिक पार्टियां उनको लुभाने की कोशिश नहीं करती और जिन दलों को उनका वोट मिलता है वह उनको वाजिब प्रतिनिधित्व देने में भी परहेज करते हैं। ऐसा ही उच्च जात के वोटर्स के साथ भी हो सकता है। जिस निरंतरता के साथ वह बीजेपी को वोट डाल रहे हैं उसका असर दो रूप में नजर आ सकता है। गैर बीजेपी पार्टियां उनको लुभाने की कोशिश बंद या कम कर सकती हैं और उनका प्रतिनिधित्व घटा सकती हैं। अभी कर्नाटक चुनाव के बाद जब कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्यों की पहली लिस्ट जारी की गई तो उसमें एक भी ब्राह्मण नाम का न होना सवर्णों के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह हो सकती है कि अगर बीजेपी को भरोसा है कि उच्च जात के वोट उससे खिसक कर कहीं नहीं जा रहे हैं तो वह उसकी परवाह कम कर सकती है और अपना ध्यान नए सामाजिक वर्गों को जोड़ने में कर सकती है। 2015 विधानसभा चुनाव में बिहार में आरजेडी ने भूमिहार जात के कैंडिडेट नहीं दिए क्योंकि उसे शायद यकीन रहा होगा कि यह समुदाय बीजेपी से बन चुका है तो उसके कैंडिडेट को टिकट क्यों देना। यह लगभग वही स्थिति है जहां मुसलमान पहुंच चुके हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि सवर्ण और खासकर ब्राह्मण भारतीय राजनीति के नए मुसलमान हैं? क्या एक विचार में बंधकर वोट देते देते मुसलमान राजनीति में अपना महत्व खो चुके हैं? क्या यही ब्राह्मणों और सवर्णों के साथ भी होने वाला है? अगर यह हकीकत में तब्दील होता है तो इसके नतीजे कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। ऐसे समुदाय का राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट सकता है जिनका राजनीतिक व्यवहार स्थिर हो चुका हो। अगर हिंदू उच्च जातियां लंबे समय तक सिर्फ बीजेपी को वोट देती रहेंगी तो मुमकिन है कि बीजेपी भी उनका प्रतिनिधित्व कम कर दे। विपक्ष तो उन्हें सीट देना कम कर ही सकता है, साथ ही इन जातियों के अंदर उन लोगों की आवाज दबी रह सकती है जो मुख्य धारा के विचार से सहमत नहीं है। इस तरह पूरा समुदाय एक रूप और कट्टर बन सकता है। इसका असर समुदाय की सौदेबाजी करने की क्षमता में कमी की शक्ल में आ सकता है। सवर्णों को विचार इस समस्या पर करना चाहिए। उन्हें वोट देने का फैसला दलों की नीतियों और कैंडिडेट की क्षमताओं को देखकर भी करना चाहिए। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। द प्रिंट सुप्रभात को सुनने के लिए धन्यवाद। एक नए अंक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।